पेज नंबर 230, चैप्टर नंबर 25।
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.literaria.edu.pk।
मैंने सोचा शायद तुम जारा से मिलते हो गए। अलीजा अगली शाम अपने कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आ रही थी जब उसने लाउंज में नानों को उमर से कहते सुना था। वो ठठक गई। रात को उमर के कमरे में जाने के बाद वो भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई थी। बहुत देर तक वो उमर के बारे में सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज सुबह उमर नाश्ते की मेज़ पर नहीं था। कॉलेज से वापस आने पर उसने लंच पर भी मौजूद नहीं पाया। सर में कुछ दर्द है उसके, आराम कर रहा है, उसके पूछने पर नानों ने कहा था। अलीजा कुछ बेचैन हो गई। क्या ज़्यादा दर्द है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, कह रहा था कि सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, नानों ने कुछ सोचते हुए कहा। आपको पूछना चाहिए था, उसने बेसाख्ता कहा। मौसम तब्दील हो रहा है, उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। नानों ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो कुछ देर तक उन्हें देखते रहने के बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर के लिए उसके दिल में मौजूद हमदर्दी में एकदम इजाफा हुआ था। पढ़ाई के दौरान भी वो बदस्तूर उमर के बारे में सोचती रही, और अब जब वो 3 घंटे बाद शाम की चाय के लिए निकली थी तो वो लाउंज में मौजूद था। नहीं, आपने गलत सोचा, मैं मम्मी से नहीं मिलता हूँ, वो काफ़ी कम मग हाथ में लिए मध्यम आवाज़ में नानों से कह रहा था। क्यों? नानों के सवाल पर उमर ने चंद लम्हे खामोशी से उनके चेहरे को देखा था। कभी तलब महसूस नहीं हुई, उसका लहजा बहुत अजीब था। वालदैन और औलाद एक दूसरे के लिए तलब नहीं ज़रूरत होते हैं, नानों ने उसे झिड़कते हुए कहा था। हमारी क्लास में पेरेंट्स और औलाद एक दूसरे के लिए तलब होते हैं, ना ही ज़रूरत, बल्कि चीज़ों की तरह होते हैं। जब औलाद को ज़रूरत पड़े तो वह माँ बाप को इस्तेमाल कर ले, और जब माँ बाप को ज़रूरत पड़े तो वह औलाद को इस्तेमाल कर ले। अलीजा ने उसकी मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनी थी। वो कॉरिडोर में जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसकी पुश्त नज़र आ रही थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, मगर उसकी आवाज़ से वो अंदाज़ा कर सकती थी कि वो तंज कर रहा था। इस तरह मत कहो, नानों ने उसे जैसे रोकने की कोशिश की थी। सच कह रहा हूँ ग्रैनी जैसे मैं ये मग इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मेरे और इस मग के दरमियान इतना ही गहरा रिश्ता है जितना मेरा अपने माँ बाप के साथ, और मेरे माँ बाप के नज़दीक भी मेरी अहमियत काफ़ी के इस गर्म मग जितनी ही होगी जो ज़रूरत के वक्त इनके काम आ जाए। उसका लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख था। अलीजा कोशिश के बावजूद अंदर दाखिल नहीं हो सकी। पता नहीं मेरा अंदर जाना ठीक है या नहीं, वो वहीं खड़ी सोचने लगी। तुम ज़ारा से मिल लिया करो, नानों की आवाज़ में इस बार हमदर्दी झलकी थी। क्यों? उमर का लहजा बहुत तीखा था। अब ऐसा क्या हो गया है कि मैं उनसे मिल लिया करूं? वो तुम्हारी माँ है, तो मैं क्या करूं? तुम बचपन में बहुत अटैच थे उसके साथ, हो सकता है। झूठ मत बोलो उमर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाकई उन्हें मिस नहीं करता, बल्कि मैं कभी भी किसी को भी मिस नहीं कर सकता, उसकी आवाज़ में बेहद संजीदगी थी। मगर ज़ारा तुमसे मिलना चाहती है, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे, बार बार तुम्हारी बातें कर रही थी, मुझे बता रही थी कि तुम्हें उसने सवात में देखा था, फिर तुम्हें ट्रेस आउट करने की कोशिश की मगर तुम होटल से चेकआउट कर गए, फिर उसने अंदाज़ा लगाया कि तुम यहीं हो के मेरे पास, और वो सीधी तुम्हारे पीछे लाहौर आ गई, नानो अब तफसील से बता रही थी। बड़ा कारनामा किया मुझे ढूंढ कर, उसने उमर को बड़बड़ाते सुना था। वो अपनी फैमिली को वहीं सवात में छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, नानो ने जैसे से जताया। ना आती, अपनी फैमिली के साथ ही रहती, इंजॉय करती। वो सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आई थी, मुझे बता रही थी कि तुम्हें बहुत मिस करती है। मिस करती हैं तो ये उनकी गलती है, ना किया करें, बे औलाद तो नहीं है, दूसरे बेटे हैं ना पास, फिर मेरे लिए ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, उसके लहजे में बेजारी थी। कभी कभार ज़ारा से मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं, उनसे मिलूँ ताकि पापा मुझे अपनी जायदाद से आग कर दें। जहांगीर ऐसा नहीं करेगा, आपको अपने बेटे के बारे में बहुत सी फहमी है ग्रैनी, उन्हें दूर कर लें। मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मगर वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम कोई नन्हे बच्चे हो नहीं क्योंकि तुम कोई नन्हे बच्चे हो ना उस पर इन्हिसार करते हो। आपको ये भी गलत फहमी है, मैं आज भी बड़ी हद तक उन पर इन्हिसार करता हूँ, उसने उनकी बात काट कर कहा था। नानू चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही। कुछ अरसे के बाद जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो तुम्हें जहांगीर पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, फिर तुम, नानू ने एक बार फिर उनकी बात काटी। क्या हो जाएगा जॉब से? चंद हजार रुपये पर मुश्तमिल तनहा तो मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती। मुझे कल भी अपने बाप की दौलत की उतनी ज़रूरत होगी जितनी आज है। सिर्फ पैसे के लिए तुम ज़ारा से मिलना नहीं चाह रहे? हाँ, यही बुनियादी वजह है। उन्होंने ज़िंदगी में अपने लिए उस चीज़ का इंतखाब किया था जो उनके और उनके मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद थी। उन्होंने मेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। मैं भी यही करूँगा। तुम चाहो तो मैं जहांगीर से बात कर सकती हूँ, हो सकता है वो तुम्हें अब ज़ारा से मिलने से ना रोके। आप अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकती। वो ज़िद्दी है मगर इंसान है, और वक्त के साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। मगर मैं मम्मी से मिलना नहीं चाहता, इसलिए आप पापा से कोई बात ना करें, बल्कि उनसे जिक्र तक ना करें कि मम्मी यहाँ आई थी या मुझे मिली थी। उसका लहजा बिल्कुल हतमी था। अलीज़ा कुछ देर तक कुछ और सुनने की मुंतज़िर रही, मगर लाउंज में खामोशी छाई रही। नानू ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, और वो खामोशी से कॉफ़ी पीने में मसरूफ था। वो दबे कदमों से लाउंज में दाखिल हो गई। अलीज़ा, आज मैंने चाय की बजाय कॉफ़ी बनवाई है, उमर कह रहा था। अगर तुम चाय लेना चाहो तो मैं हांसामा से कह दूँ, नानू ने उसे अंदर आते हुए देख कर कहा था। नहीं, ठीक है, मैं बस कॉफ़ी ले लूँगी, वो बड़े मुहतात से अंदाज में कहते हुए नानू के पास सोफे पर बैठ गई। वो अब उमर के बिल मुकाबिल थी, मगर दांसा तौर पर उस पर नज़र डालने से ग्रेस कर रही थी। नानू ने कॉफ़ी तैयार करके कप इसके हाथ में थमा दिया। पहला सिप लेते हुए उसने बड़े मुहतात अंदाज में उमर को देखने की कोशिश की। वो उसकी तरफ मुतवज्जो था। अलीज़ा को अपनी तरफ देखते पाकर वो हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़ा को हैरानी हुई, क्या वो अब भी मुस्कुरा सकता है, उसने सोचा। बारिश शुरू हो गई है, नानू ने खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे इतला दी थी। अलीज़ा ने चौंक कर खिड़कियों की तरफ देखा। शाम के मलगजे अंधेरे में लॉन में से एकदम पड़ने वाली बारिश की तेज़ बौछार खिड़कियों के शीशे को गीला करने लगी थी। एक नज़र बारिश की बूंदों पर डालकर अलीज़ा एक बार फिर उमर की तरफ मुतवज्जो हो गई। वो सोफे पर नीम दराज कॉफ़ी पीते हुए खिड़कियों के बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि इसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी। क्या उमर वाकई सिर्फ ऐसे के लिए अपनी मम्मी से मिलना नहीं चाह रहा? क्या वो इतना मटीरियलिस्टिक हो सकता है? क्या उसे अपनी मम्मी से मोहब्बत नहीं है? क्या उसे अपने पापा से मोहब्बत है? और अगर उससे उनसे भी मोहब्बत नहीं, तो फिर आखिर इससे किससे मोहब्बत है? वो उसे देखते हुए जैसे उलझ रही थी। उमर को एकदम जैसे उसकी नज़रों का एहसास हुआ। कुछ चौंक कर खिड़की से बाहर नजर आने वाले मंजर से नजरें हटाकर अलीज़ा की तरफ मुतवज्जो हुआ। अलीज़ा गड़बड़ा गई। शर्मिंदगी के आलम में उसने नजरें झुका ली थी। ग्रैनी, मुझे कुछ और कॉफ़ी डाल दें। अलीज़ा को मुखातब करने के बजाय उसने अपना जहाज़ी साइज का मग नानू की तरफ बढ़ा दिया था। नानू इसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। अलीज़ा एक बार फिर इसका चेहरा देखने लगी। वो नानू को कॉफ़ी बनाते हुए देख रहा था, और इस वक्त पहली बार अलीज़ा को एहसास हुआ कि उसकी आंखें सुर्ख भी हैं और मुतवर्रम भी। वो कॉफ़ी पीते पीते जैसे ठठक गई। क्या उमर रोता रहा है? इस सवाल ने उसके वजूद में जैसे एक करंट दौड़ा दिया था। क्या उमर भी रो सकता है? वो कॉफ़ी पीना भूल गई। उमर ने नानों से कॉफ़ी का मग थामा। सोफे पर सीधा होते हुए एक बार फिर उसकी नज़र अलीज़ा पर पड़ी थी। इस बार अलीज़ा ने इस पर से नज़रें हटाने की कोशिश नहीं की। वो उसे देखती रही, और उमर को एकदम जैसे एहसास हो गया कि वो उसके चेहरे पर क्या ढूंढ चुकी है। अलीज़ा ने उसके चेहरे पर एक रंग आता देखा था, और फिर वो अलीज़ा से नज़रें चुरा गया। ग्रैनी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अगले लम्हे वो मग हाथ में लिए खड़ा था। इसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखकर वह बेचैन हो गई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, या कम अज़ कम इस तरह उसे घूरना नहीं चाहिए था। क्या उमर को मेरा इस तरह देखना बुरा लगा है? हो सकता है वो इसे सोच रहा हो कि मैं उसे इस सूरत हाल में पाकर खुश हो रही हूँ। इसका पछतावा बढ़ता जा रहा था। रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए बरसती बारिश को देख रहा था। बाहर लॉन में अब लाइट्स ऑन कर दी गई थी और हवा से हिलते बारिश में भीगते पौधे और बेलें बहुत अजीब लग रही थी। कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इसे चौंका दिया। यस कम इन, उसने बुलंद आवाज में कहते हुए रॉकिंग चेयर को जलाना बंद कर दिया। और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला था और फिर उमर ने अलीज़ा को कमरे के अंदर आते देखा। वो अपने हाथों में क्रिस्टी को उठाए हुए थे। ओ अलीज़ा, उमर कुछ हैरान हुआ था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो कुछ नर्वस थी। नॉट एट ऑल, मैं फारिग बैठा हुआ था, तुम्हें कोई काम है? उसने मुस्कुराते हुए हुशदिली से कहा। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठ जाऊँ? वाई नॉट, उमर ने कुछ हैरानी अमेज मुस्कुराहट से कहा और वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड की पाइंथी की तरफ बैठ गई। उमर अब रॉकिंग चेयर को झुलाना बंद कर चुका था। आपको बारिश बहुत अच्छी लगती है? अलीज़ा ने खिड़की के पर्दे हटते हुए देखकर पूछा। नहीं, क्यों? मुझे बारिश से खौफ आता है। बारिश से खौफ? क्या मतलब? वो हैरान हुई। छोड़ो यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें अच्छी लगती है बारिश? नहीं, क्यों? पता नहीं, बस मुझे बारिश से उलझन होती है। उमर कुछ कहे बगैर उसका चेहरा देखता रहा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अलीज़ा की समझ में नहीं आया वो अब क्या बात करे। कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने एक कागज़ उमर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? उमर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। आप देख लें। उमर ने कुछ तजस्सुस के आलम में कागज़ खोला था। फिर इसके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। अलीज़ा की आंखों में एकदम चमक लहराई। इट्स जस्ट वंडरफुल, उमर ने कागज़ पर बने हुए स्केच को देखते हुए कहा था। थैंक यू, थैंक यू। अलीज़ा का चेहरा कुछ सुरख हुआ। मगर मैं हैरान हूँ कि मेरा चेहरा इस काबिल कैसे हो गया कि तुम मेरी स्केचिंग करो। वो तब अब मेरे दोस्त नहीं थे, इसलिए। उसे याद आ गया था जब उमर ने एक बार उसकी स्केच बुक देकर उसकी तारीफ करने के बाद स्केच बनाने की फरमाइश की थी और उसने बड़ी बेरुखी से उसकी ये फरमाइश रद्द कर दी थी। ओह, यानी अब हम दोस्त हैं? उमर ने दिलचस्पी से पूछा। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। सो नाइस ऑफ यू, वो एक बार फिर स्केच देखने लगा। क्या मैं वाकई इतना गुड लुकिंग हूँ? क्या मैं वाकई इतना गुड लुकिंग हूँ जितना स्केच में लग रहा हूँ, या फिर ये सिर्फ तुम्हारे हाथ का कमाल है? वो इससे पूछ रहा था। अलीज़ा का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। उसकी समझ में नहीं आया वो इसके सवाल का क्या जवाब दे। उमर ने अलीज़ा को झींकते हुए देख लिया था। तुम स्केचिंग के बजाय पेंटिंग्स बनाया करो, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन करवाऊँगा। वो उसकी बात पर हैरान हुई। एग्जीबिशन के लिए तो बहुत सारी पेंटिंग्स चाहिए, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? एक साल, दो साल, दस साल? मैं कौन सा मरने वाला हूँ, यही हूँ। बस तुम अपनी पेंटिंग्स बनाया करो, बस तुम अब पेंटिंग्स बनाया करो। लेकिन मैं एग्जीबिशन करवा के क्या करूँगी? मुझे कोई आर्टिस्ट तो नहीं बनना? वो हिचकिचाई। ये कोई लॉजिक नहीं है। बहुत से लोग आर्टिस्ट नहीं होते मगर पेंटिंग्स भी बनाते हैं और एग्जीबिशंस भी करवाते हैं। बस इसे प्रोफेशन नहीं बनाते, तुम भी यही करना, वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। अलीज़ा मुतमईन थी, वो इसकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो गई थी। अब उमर यकीनन अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा होगा। मैं उससे बातें करूँगी तो यह आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो जाएगा, वो सोच रही थी। नहीं, हर बंदा आर्टिस्ट नहीं होता। आपने कभी कोशिश नहीं की? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वो मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता। उसका लहजा दो टोक था। अलीज़ा यकदम साकित हो गई। अभी चंद लम्हे पहले वो मुझसे कह रहा था कि मैं और अब क्या कह रहा हूँ। अलीज़ा यकदम साकित हो गई। अभी चंद लम्हे पहले ये मुझसे कह रहा था कि मैं अब क्या कह रहा हूँ कि उसे पेंटिंग्स पसंद नहीं है। वो उलझने लगी। फिर आप मुझे पेंटिंग्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं जब आपको खुद ये काम पसंद नहीं है? वो बुरा मानते हुए बोली। मेरी पसंद या नापसंद कोई अहमियत नहीं रखती मेरे लिए, तुम्हारी पसंद या नापसंद अहमियत रखती है। वो उसकी बात समझ नहीं पाई, सिर्फ इसका चेहरा देख कर रह गई। मजीद कुछ कहने की बजाय वो उठ खड़ी हुई। क्रिस्टी को उमर की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं। उमर ने कुछ हैरानी से इसके हाथ से क्रिस्टी को ले लिया। तुम बुरा नहीं मानोगी? नहीं, वो कुछ और हैरान हुआ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो जाते जाते मुड़ी। नहीं, वो कमरे से निकल गई। उमर उसे कमरे से जाते हुए देखता रहा। लीज़ा का बदला हुआ रवैया उसके लिए हैरानी का बायस था। इतनी मेहरबानी किस लिए? वो सोचने लगा और फिर इसके जहन में जैसे झमाका हुआ। वो जान गया था वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक वो क्रिस्टी को हाथों में लिए बेहिस्सो हरकत अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। तुम कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाओ। 3-4 दिन के बाद उमर को जहांगीर ने कॉल किया था। हाल हवाल दरियाफ्त करने के फौरन बाद उन्होंने उससे कहा था। किस लिए? लई कली के पास जाना है तुम्हें, उन्होंने अपने एक कज़न का नाम लिया। लेकिन किस लिए? एक तो वो तुम्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के उन दोनों साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे जो रिजल्ट आने पर तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी ग्रुप डिस्कशन भी वही कंडक्ट करवाएं। मगर पापा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं तहरीरी इम्तिहान को। पहले रिजल्ट तो आने दें उसके बाद। जहांगीर ने उसकी बात काट दी। तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा और उसमें सिर्फ 1-1.5 माह और लगेगा। नहीं पापा, 4-5 माह लगेंगे रिजल्ट डिक्लेयर होने में, उसने तस्दीक की। मैं रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जब चाहे होता रहे, लेकिन तुम्हारे पेपर्स चेक होते ही मुझ तक तुम्हारा रिजल्ट पहुँच जाएगा और मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। वो खामोशी से फ़ोन पर उनकी बात सुनता रहा। उन लोगों से मिलकर मैं क्या करूँगा? क्या मतलब है क्या करूँगा? वो तुम्हें गाइड करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। मगर पापा, काफ़ी बेवसूली की बात है ये। वही लोग बाद में टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और वही लोग पहले ही मुझे, उसने कुछ कहना चाहा। एवरीथिंग इज़ फेयर एज लॉन्ग एज इट गोज़ टू यू, इसलिए दोबारा मुझसे असूली या बेवसूली की बात मत करना। तुम ब्यूरोक्रेसी को कोई नया ट्रेंड देने नहीं जा रहे हो, जहांगीर ने उसकी बात काटते हुए बहुत सर्द आवाज में कहा। मैंने ये कब कहा पापा कि मैं तो बस चाह रहा था कि मुझे अपनी पोटेंशियल का पता चले। अपनी पोटेंशियल का जायजा तुम बाद में लेते रहना, फिलहाल लईकली के पास चले जाओ। मैंने उसे तुम्हारी आमद के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, फिर भी जाने से पहले तुम उसे कॉल कर लेना। ठीक है, मगर मुझे कितने दिन वहाँ रहना है ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। कॉल करता रहूंगा वहाँ भी। फिर भी पापा, मुझे अंदाज़ा तो होना चाहिए कि मुझे वहाँ कितने दिन रहना है, ताकि मैं उसी के मुताबिक अपना सामान पैक करूं। शायद 1 माह या इससे भी ज़्यादा। वॉट, इतना लंबा कायम क्यों? वो हैरान रह गया। बस मैं चाहता हूँ तुम्हारी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। नहीं, तैयारी के लिए इतने लंबे कायम की ज़रूरत नहीं है, 2-3 दिन काफ़ी हैं। जब तक मैं तुम्हें वहाँ से वापस आने को ना कहूँ, वहाँ से वापस मत आना। जहांगीर की आवाज़ एक बार फिर खुश्क हो गई। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका आना चाहता हूँ, उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। किस लिए? जहांगीर की आवाज़ पहले की तरह सर्द थी। वो कुछ देर खामोश रहा। वैसे ही से क्या मतलब है तुम्हारा? जहांगीर की आवाज़ पहले से ज़्यादा तीखी थी। मैं कुछ रिलैक्स करना चाह रहा था। तुम सवाद गए तो थे, क्या वहाँ रिलैक्स नहीं किया? पापा, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तुम नाम बता दो, मैं खरीद कर भिजवा दूंगा, उमर ने उनके जवाब पर होंठ बींच लिए। मुझे अपने कुछ पेपर्स और दूसरी चीज़ें चाहिए जो मैं खुद ही आकर ले सकता हूँ। तुम्हारा सारा सामान यहीं घर में है, तुम पेपर्स और दूसरी चीज़ों के बारे में बता दो, मैं आज ही पैक करवा कर तुम्हें भिजवा देता हूँ। 2-3 दिन तक तुम्हें मिल जाएंगी। आहिरा, मुझे अमेरिका आने क्यों नहीं देना चाहते? वो बिलाहिर तल हो गया। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अमेरिका किस लिए आना चाहते हो, वो चुप सा हो गया। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो मुझसे झूठ बोलें या गलत बयानी करें, उसने अपने बाप को कहते सुना। वो होंठ काटने लगा। उसका दिल चाहे वो उनसे कहे, आपको ऐसे लोगों से नहीं सिर्फ मुझसे नफरत है। तुम्हारे अकाउंट में मैंने कुछ और रुपये ट्रांसफ़र करवाए हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। वो कुछ देर उसके बोलने के मुंतज़िर रहे। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, उसने कुछ देर बाद कहा। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करूँगा, तब तुम्हें लाइक के पास होना चाहिए। फ़ोन बंद कर दिया गया था।
अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे नावल अमर बेल, लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द